नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिमी वर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल हैं। राज्य में कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उधर तमिलनाडु के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 5,73,00,000 से अधिक मतदाता 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य भर में 75,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के परिणाम एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दमदम, हावड़ा और सप्तग्राम में रैलियों को संबोधित किया। सप्तग्राम में श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कोलकाता के जोड़ासांको, नदिया के चाकदाह और हावड़ा के उदय नारायणपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हुए भ्रष्टाचार, रोजगार और उद्योगों के मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कालना और बोगांव में रैलियां की। तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अवदंगा और हरिपाल में चुनाव प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। श्री खड़गे ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की थी। आयोग ने श्री खड़गे को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनावपूर्ण गतिरोध पिछले कुछ घंटों में और गहरा गया है। ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी तेज हो गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। समुद्री निगरानी एजेंसियों ने बताया है कि ओमान के तट के पास एक तीसरे जहाज पर गोलीबारी की गई, जिससे उसके पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की समाप्ति के बावजूद वो अपनी मौजूदा नौसैनिक स्थिति को बनाए रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि तेहरान के साथ सकारात्मक मध्यस्थता प्रयासों से अगले 72 घंटों के भीतर बातचीत शुरू हो सकती है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां वास्तविक बातचीत में मुख्य बाधाएं हैं। यूरोप की बड़ी एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा एयरलाइंस ने अक्टूबर तक 20,000 छोटी दूरी की उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह निर्णय ईरान युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और कुछ देशों में जेट ईंधन की कमी की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए लिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली में अब केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC का प्रमाण पत्र होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत के प्रति गौरव को पुनर्जीवित करना है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।